झोपड़पट्टी के पास एक सरकारी स्कूल था। मैं और प्रणाली उस स्कूल में पढ़ा करते थे। पृथ्वी और कीर्ति तब बहुत छोटे थे, इसलिए वो स्कूल नहीं जाते थे। हमारी माँ की हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने हमें स्कूल भेजा और वो हमेशा हमारी पढ़ाई पर जोर दिया करती थीं। वो चाहती थीं कि हम लोग पढ़ लिख कर कामयाब बने। पर क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा था, इसलिए मैंने पढ़ाई के साथ साथ एक होटल में झाड़ू पोछा का काम किया। थोड़े बहुत पैसे मिल जाते, लेकिन मेरे लिए बहुत था। वहाँ का मालिक अच्छा था, इसलिए मुझे रोज़ पैसे दिया करता था, और उन पैसों से मैं अपनी माँ के लिए माथे की बिंदी लेकर आता था। मेरी माँ बिंदी लगाती तो बहुत सुंदर लगती थी, पर न जाने क्यों वो बिंदी लगाना नहीं चाहती थी। सब कुछ सही था, मैं काम करता था, पढ़ाई भी करता था, मैंने अपने भाई बहनों को अच्छे से संभाला। हमारे लिए वो दिन भी रोज़ की तरह ही था। मैं और प्रणाली स्कूल से वापस आए, लेकिन घर आकर हम देखते हैं कि पृथ्वी और कीर्ति जोर जोर से रोए जा रहे हैं। हम दोनों घबरा गए और जल्दी से घर के अंदर दौड़ते हैं, पर अंदर जाते ही हमारी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। मेरी माँ का शरीर पंखे से टंगा हुआ था, उनके एक पैर को कीर्ति ने पकड़ा हुआ था और एक पैर को पृथ्वी ने। वो दोनों माँ के शरीर को खींचते हुए रो रहे थे। प्रणाली तो लगभग भागते हुए माँ के पैरों से लिपटती है और उन्हें पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। आस्तिक उस समय पत्थर का हो गया, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अपनी माँ के मरे हुए शरीर को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। उसकी माँ बलात्कार के उस सदमे से उभर भी नहीं पाई, शायद उभर जाती अगर ये दुनिया उन्हें उभरने देती तो, लेकिन हर आने जाने वाला इंसान उन्हें उस दर्द भरे सदमे की याद दिलाता है। शरीर के जख्म तो भर गए थे, लेकिन इन जालिम दुनिया वालों ने उनके मन पर जख्म लगाने में बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाई। घर से इतनी तेज रोने की आवाज़ सुनकर पास के घर से एक पड़ोस का आदमी घर पर आता है और घर का माहौल देखकर वो सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस आती है और आस्तिक की माँ के शरीर को पंखे से नीचे उतारती है। पुलिस आस्तिक की माँ के शरीर को ले जा रही थी, उसके तीनों भाई बहन जो रहे थे, लेकिन आस्तिक बस अपनी माँ को देखे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा भी अब उसके शरीर में नहीं है, वो बिल्कुल पत्थर की तरह अपनी माँ को देखे जा रहा था। प्रणाली और पृथ्वी अभी भी अपनी माँ से लिपटकर रो रहे थे, लेकिन कीर्ति आस्तिक के कंधे पर सर रखकर सो गई थी। काफ़ी देर से रोने की वजह से वो सो गई। पुलिस वालों ने पृथ्वी और प्रणाली को उनकी माँ से अलग किया और उनकी माँ को स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर ले जा रहे थे। प्रणाली और पृथ्वी आस्तिक के पास आते हैं और उसे पकड़ते हुए कहते हैं, भाई वो लोग माँ को ले गए, भाई उन्हें रोको ना, वो लोग माँ को ले जा रहे हैं। माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आस्तिक जो इस वक्त किसी पत्थर की तरह वहां पर खड़ा था, अचानक से अपने भाई बहनों के सवाल से उसके आंखों से आंसू बहने लगे। इस वजह से नहीं कि अब वो क्या करेगा, बल्कि इस वजह से कि उनकी माँ उनके लिए इतनी निर्दयी कैसे हो गई। इतने छोटे छोटे बच्चों को इस बहरम दुनिया में वो छोड़कर कैसे जा सकती हैं? उन्होंने ये कदम उठाने से पहले हमारे बारे में एक भी बार नहीं सोचा। इस बहरम दुनिया में हम कैसे रहेंगे? हम अनाथ हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं। आस्तिक की माँ को मरे 3 दिन हो गया था, लेकिन उनके साथ शोक मनाने वाला कोई भी नहीं था। वो छोटे छोटे बच्चे उस छोटे से घर में एक दूसरे का सहारा बन रहे थे, लेकिन अभी दुख कम नहीं थे। आस्तिक को जब पता चला कि उसकी माँ के केस की फाइल 3 दिन में बंद हो गई, तो वो उन पुलिस वालों के ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। लेकिन उस पुलिस वाले ने आस्तिक को एक छोटा बच्चा समझकर उसी को 2 थप्पड़ मारकर पुलिस स्टेशन से बाहर भगा दिया और कहा कि उसकी माँ की मौत एक सुसाइड केस है, अगर वो दोबारा से यहाँ पर आएगा तो वो उसे ही उठाकर जेल में डाल देंगे और फिर उसके भाई बहन सड़कों पर भीख मांगेंगे। आस्तिक उदास और हताश मन से वापस घर आ गया। छोटे छोटे भाई बहनों को भूख से रोता हुआ देख रहा था। आस्तिक अब उस होटल में परमानेंट काम पर लग गया था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन वो चाहता था प्रणाली स्कूल जाए। लेकिन अगर प्रणाली स्कूल जाती तो पृथ्वी और कीर्ति की देखभाल कौन करता, क्योंकि वो दोनों अभी बहुत छोटे थे। आस्तिक दिन रात मेहनत करता। जहाँ उसे दिन के 50 रुपये मिलते थे, वहाँ पर वो दुगनी मेहनत करके दिन के 100 रुपये लेता था। वो 100 रुपये सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि आस्तिक के लिए उसके भाई बहनों को खाना खिलाने की मेहनत थी। कुछ महीने तो इसी तरीके से चलता रहा। फिर एक दिन आस्तिक को पता चला कि जिस ढाबे पर वो काम करता था वो बंद हो गया है। आस्तिक का इकलौता रोजगार छिन गया था। रोजगार तो बंद हो गया था, लेकिन भूख लगनी तो बंद नहीं हो सकती थी ना। आस्तिक मंदिर के सामने जाकर लोगों से खाना मांगने लगा। ऐसा नहीं था कि उसने दूसरे किसी ढाबे पर काम ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन इंडियन लॉ के अनुसार किसी छोटे बच्चे को आप काम पर नहीं रख सकते हैं। इसी वजह से सब लोग आस्तिक को भगा देते थे। खाने का इंतजाम तो आस्तिक जैसे तैसे कर लेता था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम उनके पास उनकी झोपड़पट्टी तो है। सर के ऊपर एक छत उनके जीवन के लिए एक वरदान थी। उस झोपड़पट्टी की मालकिन ने भी आस्तिक को वहां पर रहने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि उसे भी उन बच्चों पर दया आ गई थी। माँ भले ही कुछ भी करती हों, बच्चे तो मासूम ही थे ना, इसीलिए उन्होंने आस्तिक से किराया भी नहीं लिया था। लेकिन तभी आस्तिक के घर में एक दिन अचानक से आग लग गई। वो तो शुक्र है कि आस्तिक उस समय घर पर ही मौजूद था और इसने जल्दी से अपने भाई बहनों को घर से बाहर निकाल दिया। लोगों ने मिलकर वहां की आग बुझा दी, पर अब आस्तिक के पास और कोई सहारा नहीं था। वहां की मालकिन अच्छी तो थी, पर इतनी नहीं कि मुफ्त में उन बच्चों को कोई दूसरी जगह दे रहने के लिए। आस्तिक अपने भाई बहनों को लेकर सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने लगा। वो मंदिर के बाहर से खाना मांगने लगा, लेकिन जब उसे खाना नहीं मिलता तो होटेल के बाहर से कचरा से खाना बिन बिन कर लाता था और अपने भाई बहनों को खिलाता था। उन्होंने एक पेड़ के नीचे किसी प्लास्टिक की पन्नी से तिरपाल लगाकर उसके नीचे शरण ली। एक दिन इसी तरीके से आस्तिक को कहीं पर गाड़ी साफ करने का काम मिल गया था। गाड़ी किसी बड़े आदमी की थी। जब आस्तिक ने उसकी गाड़ी को साफ करके पूरा चमका दिया तो उस आदमी ने खुश होकर आस्तिक को 500 रुपए दिए। 500 रुपए देखकर आस्तिक की आंखों में चमक आ गई।